लीलाओं में इनकी भूमिका प्रमुख थी। नवद्वीप लीला में भी संन्यास लेने के बाद में, संन्यास के पहले भी महाप्रभु जी का उनका संपर्क रहा, महाप्रभु जी को पढ़ाने के लिए आए, उनके बड़े भैया विश्वरूप को पढ़ाया। इनकी दो गद्दी थी, इनके दो घर थे बंगाल में, एक शांतिपुर में और दूसरा, ये जानते थे कि महाप्रभु जी अवतीर्ण होंगे, इसलिए नवद्वीप में इनका शिक्षा केंद्र के लिए अध्यापना वहाँ पर करते थे और शांतिपुर में रहते थे। तो महाप्रभु के जन्म के दिन वो यदि शांतिपुर होते तो नवद्वीप से प्राय 60-70 मील दूर शांतिपुर, वहाँ से नहीं आ सकते, इसलिए उस समय में नवद्वीप में ही वो लोग थे। इसलिए महाप्रभु जी के जन्म के दिन में शाम को जन्म हुआ संध्या के समय में, और एकदम सब लोग उपस्थित हो गए, उनके लिए प्रार्थना की, उनको कपड़े लत्ते अलंकार सब उनको दिया, उनको आशीर्वाद दिया, और अंत तक इनकी उम्र बहुत लंबी थी। महाप्रभु जी का जन्म इनके, हम समझते हैं कि 50-60 वर्ष के हो गए,
70 साल
की उम्र में महाप्रभु जी का जन्म, और 70 में 48 लगा दो, महाप्रभु जी के अप्रक्ष से बाद में जन्म थे, लंबी आयु। इनसे मैथिल कोकिल विद्यापति का भी भेद हुआ था, और सबसे पहले ये वृंदावन में आए, और द्वैत भट्ट वहाँ पर मदन मोहन मंदिर के पास में है, और इन्होंने ही मदन मोहन जी को पहले प्रकाश किया, वहाँ से लाए थे महाबन गोकुल से वो ले आए, लेकर के वृंदावन में रखा, फिर किसी प्रकार से मथुरा आए, मथुरा से फिर सनातन गोस्वामी के द्वारा वहाँ पर प्रकाश। इनके चरित्र उपदेश के संबंध में हम लोग कल फिर सभा करेंगे, और उसमें सभी वक्ता लोग अच्छी तरह से बोलेंगे। आज और वो पुष्ट किया है ईश्वरपुरी जी। इसके बाद में उसमें जड़े निकली, अंकुर होते ही ऊपर में जाएगा नीचे भी जाएगा, जितना नीचे ऊपर जाता है उतना नीचे भी जाता है, जितनी शाखाएं प्रशाखाएं ऊपर में होती हैं, बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं भी उसी तरह से एक मूल में शाखा होती है वट वृक्ष इत्यादि की, पीपल की और बड़े बड़े वृक्षों की, तो जितना ऊपर जाता है नीचे भी जाता है। यदि ऊपर जितना जाता है नीचे यदि नहीं जाए तो पेड़ गिर जाएगा, इसलिए इसमें एक मूल मूल एक मूल मूल जो सीधे गई एकदम, जितना ऊपर में बढ़ रहा है नीचे भी बढ़ रहा है, और आठ उसकी शाखाएं उसकी हैं मूल हैं जो इधर उधर से, इधर एक गई उधर से पकड़ा, इधर से एक इधर 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 आठ दिशाओं से पेड़ को जितने ऊपर में बढ़ती जाती हैं शाखाएं उतने। तो ये नौ शाखाओं में परमानंदपुरी ईश्वरपुरी तो चले गए वो उस परमानंदपुरी केशव भारती रंग रंगाचार्य उसमें सब नाम दिए गए हैं, मुझे सब नाम याद नहीं, सब सन्यासी ही सब सन्यासी। कुछ लोग कहते हैं जैसे महाप्रभु जी के इस घर में सन्यासी रहने होने से ही नहीं होगा, तो मूल ही उसकी है नौ सन्यासी हैं, और अंकुर जब जब निकला है सन्यासी से ही, सन्यासी में तो वह अंकुर निकला है तो ऊपर तक भी सन्यासी ही ऐसा समझो, किंतु उनके दिमाग में नहीं आता। तो ये भक्ति कल्प स्वरूप के मूल में ये नौ हुए, और वो जो मालाकार है जो बीज को वपन किया वो कौन है, श्री चैतन्य महापुरुष है। स्वयं मालाकार होकर के भी जब वो पेड़ के रूप में आगे बढ़ता है तो पहले होता है उसका एक स्कंद या एक थर्ड ना मूल, बहुत दूर तक तना ऊपर तक जाता है यहाँ तक, तो वो वही मालाकार होकर के भी अपने दूसरे रूप में महाप्रभु जी है, और तीसरे रूप में वो सारा वृक्ष मिला करके ये चैतन्य महाप्रभु, इसमें तीन महाप्रभु का रूप। स्वयं माली होकर के बीज बोते हैं, और फिर इसमें पहला जो मूल जो तरु की जो धड़ होता है वो माँ, और सारा वृक्ष नीचे से ऊपर तक मिला करके भी एक माँ, उस प्रेम कल्प तरु का नाम ही श्रीमन महाप्रभु। अब जबकि एक धड़ के ऊपर में जब उठा तो उसकी दो बड़ी बड़ी मोटी शाखाएं, एक है नित्यानंद प्रभु जी शाखा और दूसरा है ये दो शाखा। तब महाप्रभु के प्रेम धर्म में इन लोगों का बहुत ही सहायता और योगदान। अब एक एक में से दस दस या बीस बीस शाखाएं निकली, और बीस बीस एक एक फिर उपशाखाओं में से हजारों हजारों टहनियां निकली, और सारे वृक्ष में महाप्रभु जी उस प्रेम फल को जब उसमें से फल निकलने लगे, फल कैसा निकला, जैसे गुलर का वृक्ष होता है, देखा है गुलर का वृक्ष नहीं देखा, उसके नीचे मूल से लेकर जितने धड़ है मूल है यहाँ तक वो जमीन से निकला हुआ है, सब जगह उसके फल मोटी मोटी प्रशाखाओं में शाखाओं में स्कंधों में कोई चीज बाकी नहीं रहता। ऐसे ही इस प्रेम रूपी कल्पतरु में सब जगह ही फल लगे हुए, ऊपर नीचे भीतर डालियों में बाहर में पत्तों में सब जगह ही प्रेम फल लगा। ये देख करके माली बहुत प्रसन्न हुआ, वाह तो बहुत सुंदर, और वो फल जबकि पक करके जबकि गिरते हैं उसको सारे जगत को अद्वैताचार्य जिस प्रेम कल्प से रुके, मूल दो शाखाओं में से एक शाखा तो विश्व में प्रचार करके महाप्रभु जी के इस प्रेम धर्म को उन्होंने भी आप लोगों ने सुना बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शास्त्रों में तो लिखी है किंतु उसका आचरण करना बड़ा भारी कठिन है। यदि मान लिया कि यहाँ पर 10 ब्राह्मण आ जाए, मथुरा के 24 लोग आए, हमारे यहाँ प्रसाद बन रहा है, कच्चा प्रसाद बन रहा है, तो वो यहाँ आकर के कच्चा प्रसाद पाएंगे कि नहीं? कहे ये कच्चा है ये पक्का है, हम पक्का पाएंगे। यदि उनमें से कोई एक पा लिया तो सभी उसको जाति से बहिष्कृत करने की चेष्टा, और हम लोग भी उनको जोर देकर के नहीं कहेंगे भाई हमारे यहाँ यदि पाना है तो ये प्रसाद है महाप्रसाद, हम कच्चा पक्का नहीं जानते हैं, साधु जी को भोग लगाए पाइए और निकल जाइए, ऐसा कहने का साहस है समाज में हम लोग? शास्त्र में लिखा है नीच जाति कोई भी व्यक्ति हो भगवान का नाम लेने से परम पवित्र हो जाता है, और ब्राह्मण भी भजन नहीं करे तो वो शूद्र से भी अधम है। चंडाल में भी यदि कुल में जन्म लेकर के, शूद्र कुल में भी जन्म लेकर के, जहां भी हो भगवान का नाम करता है तो परम पवित्र हो जाता है। ये तो शास्त्र में हम इसका पालन करने में समर्थ हैं कि नहीं? देखो अब हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के पहले ये सब चालू नहीं था, अभी भी ये जो इंग्लैंड अमेरिका से विदेशी भक्त लोग आते हैं उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया ना, सब कुछ छोड़ दिया, गले में तुलसी माला लगा, पान तक नहीं खाते, बीड़ी सिगरेट चाय कुछ नहीं, स्त्री पुरुष भी तिलक लगाते हैं और हिंदुओं जैसे रहते हैं, किंतु जगन्नाथ जी के मंदिर में उनको प्रवेश अधिकार नहीं, भले एक नास्तिक हो हिंदू का हिंदुस्तान का, एक नास्तिक सब कुछ अखाद्य अंडा गोश्त मांस सब खा रहे हैं, झूठ चोरी कर गुंडागिरी कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदू कुल में जन्म है इसलिए ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश से उनको कोई नहीं, किंतु समाज में ऐसा कोई नहीं है जो जाकर के कहे ऐसा क्यों होगा। ऐसे समाज में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भक्ति की बात लिखी, अद्वैताचार्य जी समाज की परवाह नहीं, हरिदास ठाकुर को बुला करके और वहां पर बैठा दिया, ये बड़ी भारी बात नहीं है, यहाँ बात है ये वैसा समाज आज से 500 वर्ष पहले और बड़ा कठोर था, और उसमें एक मुसलमान को जो हरिनाम कर रहा है वो भी भिक्षा मांगने वाला, और उसको अपने समाज में वहां पर बड़े प्रतिष्ठित वेद वेदांत सब जानने वाले समस्त शास्त्र में पारंगत हैं और उनको बुलाया गया है सम्मान देने के लिए, और उसमें सबसे ऊंचा आसन और पहला ग्रास उठाएगा कौन, ये विचार हो रहा था, उन्होंने सोचा कि सबसे बड़े तो पंडित तो यही और विद्वान है अद्वैताचार्य जी है वृद्ध भी वैश है यही लेंगे, उन्होंने कहा जी नहीं, देखने लगे देख करके किसी को पसंद नहीं आया, क्यों नहीं पसंद आया, न तो ये लोग हरिनाम करते हैं न कि कृष्ण के प्रति इनकी खास निष्ठा है, देवी दुर्गा काली सबका पूजा करते हैं, विषय घोर है, कोई की भी निष्ठा ऐसी भक्ति नहीं है शुद्ध, मैं किसको बैठलाऊं। हरिदास ठाकुर बाहर में बैठे हुए थे दरवाजे पर चुपचाप नीचे, और उनको पकड़ कर वो समझ नहीं सके कि किस लिए ले जा रहे हैं, बहुत मना करने लगे, कभी उनको लेकर के श्रेष्ठ आसन पर ऊंचे पर बैठा करके और सामग्री जितनी थी साध्य की सब उनके सामने दे करके जो पहला ग्रास ये लेंगे तभी बस काना खुशी होने लगे, भाई ये कैसे खाएंगे, ये तो अपवित्र हो गया ये मुसलमान कुल में, बस छोड़ करके चलने लगे। हरिदास ठाकुर जी कहा हम लोग यहाँ नहीं खाएंगे, तो बहुत अच्छा आपको नमस्कार है आप जाइए, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, उसमें दो चार विद्वान अच्छे भी थे वैष्णव के, अद्वैताचार्य के विरुद्ध तुम लोग कर रहा है, ये तो कभी भी अन्याय नहीं करते, सोच विचार लो। और इन्होंने कहा जी जाओ सोच विचार लो, तुम लोग जाओ, हम तो जो किया है वो शास्त्र की मत से ये ठीक किया है। जो को भगवान का भजन नहीं करता है उसे हमारा कोई संपर्क, चाहे रिलेटिव हो, चाहे भाई हो, बंधु हो, स्त्री हो, हमारा वही बंधु है, हमारा वही पूजनीय है जो भगवान का। ये 3 लाख हरिनाम दिन भर रात भर में करते हैं, इनको संसारी कोई चीज से मतलब नहीं, ये वर्णाश्रम धर्म से ऊपर अवधूत है, इनको समझना बड़ा भारी कठिन है। इनका अनादर होने से भक्ति दूर हो जाएगी, इसलिए हम तो इन्हीं को बैठाएंगे, चाहे हमारा समाज चला जाए न रहे, हम इसे संवार से जुड़े, ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। है दृढ़ता हम लोगों में, बहुत सी चीजें मन में डूब जाए, इसलिए पवित्रता चाहिए, ये दृढ़ता है। फिर से सब लोगों ने आकर उनसे क्षमा मांगा और उस प्रसाद को पाया, उन लोगों को समझा दिया जी ये बात ठीक है। ये अच्युतानंद जी उनके पुत्र थे, उनके पुत्र 7-8 थे, जिसमें ये छोटे पुत्र थे। उन्होंने और पुत्रों को वो क्या करते हैं अपने वंश से तज्ज पुत्र कर दिया। हमारे संपत्ति में इन लोगों का किसी का अधिकार नहीं होगा, हमारा बस एक ही बेटा है अच्युतानंद, और कोई बेटा नहीं। क्यों? और लोग भजन नहीं करते, देवी दुर्गा इत्यादि की पूजा करते हैं, मांस मछली खाते हैं और सब्जी का, एकांतिक रूप में राधा कृष्ण का भजन। और अच्युतानंद कैसे हैं? एक दिन अच्युतानंद उनकी गोद में बैठे थे तो अद्वैताचार्य के पास में एक व्यक्ति आया, उसने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? महाप्रभु जी के गुरु का नाम क्या है? महाप्रभु जी के गुरु का नाम केशव भारती गोस्वामी। बस सुनते ही अभी छोटा सा बच्चा 2-3 वर्ष का 4 वर्ष का भी होगा, और वो उनके गोदी से एकदम उतरने लगा, हाथ पैर छोड़ दिए हमको उतारो, एकदम क्रोध से लाल हो गया। बहुत अद्वैताचार्य गोदी में रखने की चेष्टा की, नहीं रखा, वो नीचे उतर गया। जैसे जो जगत गुरु है, विश्व का गुरु और सुखा गुरु, अब फिर तुम केशव भारती हुआ। जगत गुरु महाप्रभु जी हैं, इनका गुरु कोई नहीं है, यही सबसे श्रेष्ठ है। जगत गुरुओं के भी जगत गुरु के जगत गुरु मूल ये हैं, ये कृष्ण स्वयं हैं। सुनकर का द्वैताचार्य के आंखों में आंसू आ गए, हृदय भर गया, फिर से उसका चुंबन कर कहीं नहीं, तुम जो करे वही ठीक है, मैं तो ऊपर से साधारण जनरल रूप में कहा था, जो कहा वही बात है। तो इसलिए उनको अपना वंशधर रखा, उत्तराधिकार उसको दिया और बाकी सब लोगों को नहीं। उन लोगों में एक बात थी, एक नित्यानंद जी के कुछ लोग पक्ष ले रहे थे और कुछ ले रहे थे अद्वैताचार्य, और अद्वैताचार्य और नित्यानंद में विरोध है। इसलिए महाप्रभु जी को तो भगवान मानते हैं, किंतु नित्यानंद प्रभु जी को भगवान नहीं मानते और आराध्य नहीं मानते। कुछ लोग थे उस समय महाप्रभु के रहते हुए ही, महाप्रभु जी को सभी लोग उस महाप्रभु जी के जीवित काल में ही, प्रकट काल में ही उनको भगवान मानते थे, राधा कृष्ण का अवतार, क्योंकि महाप्रभु जी के समय में ही अनर्पित चरित ये श्लोक हुआ, उसको सबने स्वीकार किया उनके समय में। किंतु नित्यानंद प्रभु में दो बातें, दो विचार। कुछ लोग कहते हैं अरे उन्होंने जाकर के शादी कर ली जानवा वसुधा देवी से, वो हमारे आदर्श, अब वो कान में कुंडल धारण करते हैं और अच्छा सा वेद लेकर के इधर उधर चलते हैं, प्रचार करते हैं, इसलिए वो भगवत तत्व नहीं। ये अच्युतानंद जी कहते थे ये भगवत तत्व है, उनको सम्मान। और अद्वैताचार्य को भी वो कहते थे महाविष्णु के अवतार है उसी समय, इसलिए अद्वैताचार्य को अपना पुत्र रखा और बाकी सबको। ये भी कठिन हृदय का होना चाहिए, दृढ़ हृदय का, सबके द्वारा संभव पर नहीं है। ये भक्तिमान है, ये भक्तिमान नहीं है, हमको भक्तिमान लोगों से ही आवश्यकता है। इस पर दृढ़ता से आचरण करने वाला व्यक्ति बहुत संसार, कभी अधिकांश लोग लौकिकता के समय में झुक जाते हैं, झुक जाते हैं। उस समय में एक समय में कीर्तन हो रहा था, कीर्तन के प्रारंभ में ही अच्युतानंद जी मूर्छित हो गए। मूर्छित होते ही अद्वैताचार्य जी को किसी ने जाकर के बतला दिया, वो तो मूर्छित हो गया। ये गए वहां, पहले कृष्ण कृष्ण कहे नहीं उठा, फिर जोर लगाया तभी नहीं उठे, बेहोश एकदम मरे हुए जैसे हो गए भाव आवेश। करनी सिंह मंत्र का खूब जोरों से पाठ और खूब जोर से प्रेम ध्वनि करने लगे। उस समय में धीरे 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 विपत्ति में निशिंग मंत्र का पाठ किया जा सकता है। ये कृष्ण ही के ये सब की रक्षा करने वाले हैं, जैसे गिरिराज जी गोवर्धन है ऐसे निशिंग। एक समय में महाप्रभु जी इनको कभी कभी प्रणाम करते थे, क्योंकि छोटे हैं और ये उम्र में अद्वैताचार्य बहुत बड़े हैं, महाप्रभु से करीब करीब 60 वर्ष शायद बड़े होंगे या और उनके गुरु वर्ग में ईश्वरपुरी पार के गुरु भाई हैं, इसलिए उनको गुरुवत सम्मान देते थे। नित्यानंद प्रभु को इनसे भी अधिक सम्मान देते, क्यों? वो लक्ष्मी पति के तीर्थ के शिष्य और माधवेंद्रपुरी पार के लघु गुरु भाई थे, इसलिए उनको सम्मान देते थे। हम लोगों को भी वैसे ही सम्मान देना चाहिए भाई, मर्यादा भक्ति में मर्यादा का प्रश्न होता है, जो श्रेष्ठ हैं उनको वैसा सम्मान देना चाहिए और श्रेष्ठ को भी श्रेष्ठ रहने की चेष्टा करनी चाहिए। श्रेष्ठ का कोई गुण नहीं है और श्रेष्ठ होने का वो दंभ भरता है, तो ये ठीक दोनों तरह स्वीकार, इसलिए मर्यादा देना हमको। तो वो मर्यादा देते थे महाप्रभु, ये कुछ तंग आ गए, बहुत समझाने की चेष्टा की किंतु वो माने नहीं महाप्रभु, तो ये चले गए शांतिपुर और वहां पर योग वशिष्ठ का पाठ कर रहे। योग वशिष्ठ किसको कहते हैं? वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी के आने से पहले संसार से वैराग्य होने के लिए योग वशिष्ठ नामक एक ग्रंथ की रचना, उसमें संसार स्वप्नवत झूठा है, जितने जीव हैं वो सभी शिव हैं, वो सभी ब्रह्म हैं, एक तरह से अद्वैतवाद का भाव शंकराचार्य के उपदेशों के मूल लिए। उन्होंने पहले इस चीज का उपदेश जब रामचंद्र जी उनके यहाँ पढ़ते थे और चारों भाई, तो उस समय दिया। उन्होंने कहा जब ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है और एक है। रामचंद्र जी ने कहा जब एक ही है तो आप हमको उपदेश क्यों देते हैं, हम ये दोनों ब्रह्म है, एक है, उपदेश देने की जरूरत क्या? और आप गुरु हो गए और मैं चेला हूं, ये ब्रह्म एक ही ब्रह्म में क्या जरूरत है? और तुम देख रहे हो ये हमारे सिर आंख पैर ये सब चीजें हैं, धनुष लेकर के तीर लेकर के खड़ा हूं, और तुम कहते हो जो निराकार होते ये कैसे हो गया? यदि ब्रह्म निराकार है और वह एक ही है तो कौन कहेगा जब ब्रह्म निराकार है वो साकार है? कौन कहेगा जो देखता है? तो देखने वाला कोई व्यक्ति है और उनको निराकार कर रहा है, तो वो कह रहा है वो निराकार है, तो ये कहने वाला कौन है? इस तरह से उसमें लघु कथा के द्वारा, बड़ी मनोरम कथा के द्वारा, बिंदुला नाम की कोई महिला या कौन सी है उसका मैं बहुत दिन पहले बचपन में पढ़ा था, तब हमने चैतन्य चरितामृत में पढ़ा कि योग वशिष्ठ सुनने से भक्ति नष्ट हो जाती है, तो उसका पढ़ना भी उसमें उसका उसी तरह से बतलाया गया, भगवान निराकार है, निरंजन है, जीव भी वही है, संसार मिथ्या है, ये संबंध नाते सब मिथ्या है, ये सब उसमें बात, उसमें रोचक रोचक कुछ कहानियां हैं। तो ये जाकर के वही पाठ करने लगे। इतने में महाप्रभु जी ने सुना और वहां पर गए, वहां पर उनकी दाढ़ी पकड़ी, उनको गिरा दिया व्यास आसन से और थप्पड़ से, मुक्के से, पैर से नहीं, किल भूसे से ऐसे वैसे मारे। उसी समय उनकी पत्नी आई सीता देवी, कहे ये बूढ़े को मार डालेगा क्या? उस समय में अद्वैताचार्य उठ करके नाचने लगे, ये यही तो मैं चाहता था, ये आप मुझे शासन करें और हमको इस प्रकार से करें, दंडित करें, तो आप तो हमारी हमारी पूजा करते थे, अब हमारी पूजा क्यों नहीं कर रहे? इस तरह से चलाकी के साथ में। तब महाप्रभु जी यह जब देखा अद्वैताचार्य नाचने लगे तो बड़े, आज मैं जीत गया वो हार गए, ऐसा कहने लगे। बस चला कि चतुराई से वैष्णव को भी सम्मान ऐसे ही देना चाहिए, जब तक वैष्णव का सम्मान देना नहीं सीखेंगे, परस्पर परस्पर वैष्णव वैष्णव कलह करेंगे, दूसरों की इज्जत नहीं देंगे, सम्मान मर्यादा नहीं देंगे, तो भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो, भक्ति वहां पर कैसे आए? इसलिए इन सबको छोड़ करके, द्वेष कलह इत्यादि छोड़ करके वैष्णव में अनुराग होना चाहिए। इसलिए बताया गया 6 कार्य से हमारी भक्ति, वैष्णव के चरण में अपराध होता है और भक्ति नष्ट हो जाती है। वैष्णव को क्या है वो? हाँ, हंती वैष्णव को मारना थी। जिन्होंने हरिनाम का आश्रय ले लिया है और एकांतिक भजन में प्रवेश करने की जिनका इच्छा है, चेष्टा कर रहे हैं, उनको मारना थी। वो भी देश भाव से, प्रेम भाव से, जैसे महाप्रभु जी उनको मार रहे हैं, वो देश भाव नहीं है, ऐसे देश भाव रहित होकर उसके प्रति द्वेष न करे, उसे मारे पीटे नहीं, निंदा न करे, गाली गलौज न करे। यदि वो आ रहे हैं तो प्रसन्नता उनको उनको देख करके उठे खड़े हो जाए, खड़ा होने के और अभिनंदन करने की तो बात क्या है, यदि देखते ही उनको प्रसन्नता नहीं होती है तो भी अपराध है। क्रुद्धते, गुरु जी को देख करके, वैष्णव को देख करके क्रोधित हो जाता है। जातिनो हर्षम, हर्ष नहीं होता उसको, उनको गाली देने की तो बात क्या, यदि देख करके खड़ा नहीं हुआ, आनंदित नहीं हुआ, हृदय भीतर से प्रसन्न नहीं हो गया, तो वो ये सब अपराध है। जातिनो हर्षम, ये पतन का कारण है, भक्ति उसे पतित हो जाए। अद्वैताचार्य, हमारे जितने भी महापुरुष लोग हैं, इन सब की विधिवत शिक्षा दी, उन शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। मान लिया कि जिसे हमारे नरसिंह महाराज जी थे, बड़े खुले दिल के, अब यहाँ पर तो देखने वाले कोई नहीं है, शेर शाही साहब देखा हो, रंगनाथ की देखा नहीं, हमको याद नहीं, देखे चीज नरसिंह महाराज के, वही एक आदमी रंगनाथ है तो देखे थे ना, यही 2 आदमी और बाकी सब लोग बड़े खुले आदमी, भीतर बाहर एक, वो कोई आया ना उनसे मिलने के लिए, उसमें थोड़ा सा त्रुटि देखा तो वो कहते थे ये देखो हम तो ऐसे हैं जैसे कोई वैष्णव आ रहा है तो छाता लगा करके, इधर से जब उधर से आ रहा है ना तो हम इधर से चले जाएंगे छाता लगा करके, जैसे वो उसको हमने नहीं देखा, ये भी अपराध है। वैष्णव का गुरु का सम्मान ना किया जाए, भगवान का, भगवान की पालकी इत्यादि आ रही है और हम लोग उसका सम्मान नहीं करें, कोई उन्नत वैष्णव आ रहे हैं उसका सम्मान नहीं, छाता अड़ाल करके कहते हैं, मैंने छाता की आड़ करके, और ये भी अपराध। इस तरह से अद्वैताचार्य ने ये सब चीजों को ये दिखलाया। और भी एक बार वो ज्ञान मार्ग की कोई व्याख्या कर रहे थे वो अलग से, ये अलग से है। गीता का एक बार ज्ञान कर, अभी नित्यानंद जी के साथ में कलह क्रीड़ा की क्रीड़ा कलह का भी प्रसंग इन्होंने बतलाया। नित्यानंद जी है अद्वैताचार्य के अंश के अंश के अंश कला है। नित्यानंद प्रभु जी मूल है, उनके अंश के अंश के अंश के कला है, किंतु है मां विष्णु तत्वतः एक है। इसलिए जहां कहीं होता है ये भक्ति एक ऐसा राज्य है, इसमें ऊंचा नीचा का भेदभाव नहीं रहा। जिसमें भक्ति होती है थोड़ी या अधिक, बड़े प्रेम के साथ में उसे व्यवहार होता है। अपना बड़प्पन भूल जाना पड़ता है, अन्यथा भक्ति नहीं रहेगी। इसलिए नित्यानंद कहां, उनके मूल अंशी बलदेव प्रभु, और बलदेव प्रभु के अंश मूल संकर्षण, उनके महासंकर्षण, महासंकर्षण के कर्णाप दिशाई, और कर्णाप दिशाई के ये अंश महाविष्णु। किंतु महाप्रभु और उनमें बड़ा प्रेम और बराबरी का भाव रहता, और द्वैताचार्य भी वैसे ही व्यवहार करते थे संभ्रम छोड़ करके विषम भाव से, और नित्यानंद प्रभु विशेष करके महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु शिष्य को भी कहा गया ये गुरु की विषम भाव से सेवा करो, विषम्भेन गुरु सेवा, गुरु जी की सेवा। यदि दूर रहेंगे भाई वन क्या जान से अपराध हो जाएगा तो भक्ति नहीं होगी। बेटा ये नहीं चिंता करता जो मैया के बराबर हम बैठे और पिताजी के बराबर आसन पर उसी खाट पर बैठ जाए, उनकी गोदी में बैठे, ये नहीं ऐसे विषम रूप में। ये विषम भाव कब आएगा, जबकि ममता रहेगी तो उस समय अपराध का विचार नहीं। तो ये दोनों जहां मिलते तहां कुछ न कुछ जरूर प्रेम कलह होता है। शांतिपुर में महाप्रसाद के महिमा को जगत में प्रचार करने के लिए प्रेम कलह होता है। एक साथ में सभी बैठे हैं और द्वैता पहले नित्यानंद प्रभु जी दाहिने तरफ में, उसके बाद में अद्वैताचार्य, इसके बाद में अलग अलग श्रेष्ठता का श्रेष्ठ व्यक्ति दाहिने तरफ में बैठे, उसके बाद में क्रम से अधिकार के अनुसार में ये सब चीजें होनी चाहिए। कभी कभी देखते हैं यहाँ उल्लंघन होता है तो उस समय कष्ट भी होता है। सब समय ऐसा ठीक रखो जो वैष्णव का सम्मान दे करके उनको सम्मान, जो हमसे श्रेष्ठ है उनको दाहिने तरफ में रखो, उनको सब समय सम्मान देने की चेष्टा करो। उनसे आगे जाकर किधर बैठ गए ऐसा सब, जहां कहीं बैठने या कीर्तन में बैठने में प्रसाद पाने में विशेष करके ये सब भाव ठीक रखते। तो वो दोनों एक साथ में बैठे थे, नित्यानंद में बैठे थे, और अद्वैताचार्य कहा हम लोग शुद्ध गृहस्थ ब्राह्मण, और इसमें कहा जिसका जाति कुल का ठिकाना नहीं वो आकर के बैठ गए, अवधूत भी नहीं, जाति पाति का कोई ठिकाना नहीं है, कोई जानता नहीं है कौन इसका बाप है, कौन इसकी मैया है, कहाँ कौन कुल में आया है नहीं आया है, कुल शील इत्यादि आचार से रहित व्यक्ति हमारे साथ में बैठ गया। यहाँ पर सब बड़े बड़े वैष्णव और ब्राह्मण लोग बैठे हैं, दिखला रहे हैं नित्यानंद प्रभु के द्वारा जो भजन में अधिक श्रेष्ठ है वही जय भजे सही अभक्त ही नचा। जाति कुल मर्यादा विद्या ये सब काम में नहीं आती, जिसकी भक्ति अधिक है उसी का सम्मान होना चाहिए। अब अद्वैताचार्य के द्वारा ये पर पूर्व पक्ष उठाया, जिसका कुल शील ब्राह्मण है कि नहीं है कि क्या है, और ब्राह्मण होने पर भी दस जाति का जहां जाता है वहीं पर खा लेता है। दस जाति के माने कोई भी वैष्णव हो ठाकुर जी का भोग लगा हुआ तो नित्यानंद प्रभु ले लेते हैं, वो अधिक इस पर विचार नहीं, ऐसा होना ही चाहिए भक्ति राज्य का। ये महाप्रसाद ठाकुर जी को लग गया तुलसी दे करके, कच्चा पक्का इत्यादि का या कौन है ये सब विचार नहीं। जगन्नाथपुरी में कहते हैं जैसे चावल का भोग लगता है और सभी लोग पाते हैं, किंतु तो भी वो लोग रखते हैं स्मार्ट में भाव रखते हैं, अपने आप सबको बांट देंगे, किंतु तो आप यदि परवेशन करेंगे तो वो लोग नहीं खाएंगे, तो ये क्या हुआ? वो कहेंगे हम ही लोग परवेशन करेंगे। यदि हम सन्यासी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, और पूरी के पंडों को बैठा दिया या बैठिए और हम लोग प्रवेशन कर रहे हैं, हम लोग भी तो भजन करते हैं, नहीं हम पूरी के ही जो ब्राह्मण है जो ठाकुर जी की पूजा करते हैं वही करेंगे, तो ये क्या हुआ? अरे वो तो सिंघानिया के लिए तुम जानता नहीं है, हम तुमसे लाख गुना अधिक जानते हैं। प्रसाद पाने के समय में आसन नहीं लेंगे और वहां प्रसाद है इसका सम्मान कर रहे हैं और कहेंगे जैसे ये लोग चख लो, ये चख लो, ये खाएंगे, हम चख करके जाएंगे तुम ये खा लो तो खाएंगे ऐसा, तो ये सब कहते तो हैं, किंतु नित्यानंद प्रभु जी और उनमें यही वार्तालाप चल रहा है, इसलिए कि और जो बैठे हुए हैं सामने वो लोग समझे इस चीज को, इसलिए उन्होंने कहा अरे हम यहाँ पर बैठे हुए प्रसाद पा रहे हैं और क्या बोला है वहां पर, उन्होंने कहा जी अवधूत बैठा हुआ है, उन्होंने प्रसाद खा रहे थे वो और लेकर के ऐसे छोड़, हाँ उन्होंने कहा जी एकादशी का पारण करूंगा और थोड़ा सा दिया था शायद पहली बार, अच्छा खा जानो तो वो उन्होंने थोड़ा सा खेल, उन्होंने कहा देखो तो ये जूठा सब जगह लगा करके सब जूठा कर हम लोगों का फिर स्नान कर, अरे तुम महाप्रसाद के प्रति अपराधी हो, ये महाप्रसाद इसके सुनने से जगत पवित्र हो जाता है, तुम अपवित्र हो गया, ये जूठा हो गया, बासी हो अपवित्र अवस्था में लाए गए किसी अपवित्र व्यक्ति के द्वारा लिया होने पर भी प्रसाद अपवित्र नहीं, ये भगवत स्वरूप है, ऐसा नहीं होने, इसलिए इन सब चीजों को शिक्षा देने के लिए प्रेम कलह के बहाने उन्होंने जगत को शिक्षा, कभी परस्पर स्नान कर रहे हैं जल के लिए हो रहे, महाप्रभु कितने गंभीर आज बच्चे बन गए, नित्यानंद प्रभु बलदेव समस्त ईश्वरों के ईश्वर आज ये बाचाल बन गए, लड़के जैसे पूजा कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु जी में और उन दोनों में पानी उलीछ रहे हैं परस्पर, और की तो बात क्या, महा गंभीर ये सार्वभौम भट्टाचार्य और कहां राय रामानंद के साथ में जल के लिए, स्वरूप दामोदर जैसे इतने बड़े भारी अगाध विद्वान पंडित गंभीर उनको किसी से होने लगे, इस तरह से परस्पर शायद कोई महाप्रभु जी से ही होने लगा, इस तरह से परस्पर सब बच्चे बन गए, भक्ति ही है जिसको सबको नचाती, भक्ति अपनी नाचती है, भक्त को नचाती है, भगवान को नचाती है, स्थान को नचा देती है, विश्व ब्रह्मांड को नचा देती है, उस समय सभी बालक जैसे हो जाते हैं, तो वो दोनों में कलह हो रहा है, नित्यानंद प्रभु जब भी युवक है पानी से उनको ढक देते हैं और वो गाली गलौज करते हैं, ये बूढ़ा कुंभारा तरह से, ये भक्ति के स्वभाव को ये दोनों ये दिखला रहे हैं जगत की महिमा, ये कैसा महापंडित महागंभीर सागर जैसा वो बालक जैसा ही ऐसा काम करता है, भक्ति ऐसे ही बना देती है, ये वही प्रेम है जो कृष्ण सर्वेश्वरेश्वर परब्रह्म और सब कुछ होते हुए भी राधिका के चरण की उपासना करते हैं, वही प्रेम, यही प्रेम सबको नचा देता है, प्रेम भी नाचता है प्रेमी को, प्रेम करने वाले को, सबको वो नचा देता है। महाप्रभु जी ने इनको कहा प्रतिवर्ष आने की आवश्यकता नहीं, आप और नित्यानंद प्रभु उधर में ही पूर्व दिश में ही प्रचार कर, आप लोग प्रचार कर। कभी ये मानते नहीं थे, वहीं पर प्रचार करते थे। प्रचार मैंने नित्यानंद प्रभु जी हजारों वैष्णवों को साथ लेकर के प्रचार करना रहा, जिसका पानी छुआ चलता नहीं था उनके घर में जाकर। जैसे स्वर्ण बनिक है, स्वर्ण बनिक मैंने सोने का जो कारोबार करते हैं सोनार, तो उनके घर का पानी नहीं चलता था हमारे भारतवर्ष में। क्यों? अपनी मैया का भी कोई गाना बनाएगा तो उसका काट लेगा कुछ, वो किसी को छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसका पानी नहीं चलता था। या कलवार कहते थे न क्या, कलवार कौन जाती है ये सनोरिया ब्राह्मण, कलवार दूसरा होता बनिया जाति का कुछ, कलार नहीं कलवार, हम लोगों के तरफ कलार जाति कोई होती है तब वही हो गया। अच्छा, ये नित्यानंद प्रभु जी हजारों भक्तों को लेकर के जहां श्रद्धा मिलती थी वहीं पर जाते थे। भक्ति के प्रति जहां पर श्रद्धा है, वो नीच जाति का भी हो उसके घरों में भी जाते, उनको भी वैष्णव बनाते। सबसे पहले उन्होंने उदाहरण दत्त ठाकुर, यहाँ पर कि हम लोगों का चिचुड़ा में मठ है, वहां जाकर के उन्होंने उनको दीक्षा दी। और बड़े भारी वो धनी आदमी थे, राजमंत्री थे, उनका बड़ा भारी प्रभाव था, बच्चों पर सब कुछ छोड़ करके नित्यानंद प्रभु के साथ में हो गए। ऐसे ऐसे हजार, चुचुड़ा एक हम लोगों का स्थान है मठ, वहाँ पर सब लोगों को बनियों को उन्होंने वैष्णव बनाया, इसका पानी नहीं चलता। इसके पहले माधवेंद्रपुरी पाद जी थे, मथुरा में उनका एक भक्त था सनोड़िया विप्र, महाप्रभु जबकि यहाँ पर विश्राम घाट पर नित्य कीर्तन कर रहे थे, हरी बोल करते थे, नित्य कर रहे थे, हजारों लोग उनके दर्शन कर रहे थे। जब हरी बोल करके नित्य कर रहे थे तो एक ब्राह्मण आया निकल करके, बूढ़ा सा, बड़ा सुंदर दिव्य ज्योति का, और उनके साथ में वो भी हाथ उठा करके हरी हरी बोल करके, वो भी रोते रोते गिर करके मूर्छित हो गए, वो भी मूर्छित। जब उनके मूर्छा छूटी, जब वो कीर्तन समाप्त हुआ तो इन्होंने कहा आज हमारे घर, महाप्रभु जी ने कहा जैसे आज तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? तो मैं सनोड़िया विप्र, सनोड़िया विप्र है तो इतना कीर्तन करता है, तुमसे किसी वैष्णव से संग आज तक हुआ मालूम होता, किसी से हुआ होगा तो माधवेंद्रपुरी नाम के एक जति थे, उन्हीं का मैं शिष्य। हाँ, बस गले से लगा लिया, प्रेम से पकड़, आज चलो तुम्हारे घर में हम प्रसाद लाए। उस समय मथुरा में ब्राह्मण लोग उन लोगों के घर में कच्चा चीज ले लेते थे, पका हुआ कोई चीज नहीं खाते थे। बस वो पहले गए महाप्रभु जी और उनके घर में महाप्रसाद लाया। लोग कहते हैं कि महाप्रभु जी केवल ब्राह्मणों के यहाँ ही प्रसाद लेते थे। देखो यहाँ पर ब्राह्मण होने पर भी उस जाति का जिसको कोई नहीं छूते चलता था, और उसके घर में जा करके उन्होंने बड़े प्रेम के साथ। ये भी ऐसे ही नित्यानंद प्रभु जी प्रचार करने गए और वहां पर लाखों लोगों को जो निम्न जातियों के थे वहां पर हरि भक्ति का प्रचार कर, उसका भी देखा जाता है। जैसे नरोत्तम ठाकुर जी ने मणिपुर और इत्यादि देशों में प्रचार किया, ये सब प्रचार कर, अद्वैताचार्य ने इसी प्रकार से सारे देशों में प्रचार किया। अंत में वो महाप्रभु जी को, जब महाप्रभु जी ने कहा जी आप प्रचार में रहना, तो वहां बंगाल से एक चार लाइन पांच लाइन में एक कविता पाठ दिया, जिसको दूसरा नहीं समझ सकता है, केवल महाप्रभु जी समझे, और उनको ये पत्र देकर के किसी को भेजा। वो वहां जाकर के महाप्रभु जी को सामने सबको ये दिया, देखा इसमें क्या लिखा है, तो उन्होंने पढ़ा, यही बाउल के कहियो, आउल कहियो बाउल के, बाजारे ना बिके चाउल, आज सब लोग होइगा बाउल, इत्यादि उन्होंने कहा। एक पागल, बाउल माने होता है जिसका विचार स्थिर नहीं है, पागल जैसा, कब क्या करेगा कोई ठीक, किंतु ये प्रेम के पागल। आउल कहे, आउल
अच्छा
अर्थात एक ये अद्वैताचार्य बाउल, इन्होंने एक बाउल पक्के बाउल को महाप्रभु जी को उन्होंने कहा, वो भी प्रेम के मूल पागल है, उनसे जा करके कहा, क्या कहा, बाजार में अब चावल नहीं बिकता। तो बाजार में चावल नहीं बिक रहा, माने का यदि सबके पास घर में चावल है तो कौन खरीदेगा। यहाँ पर मान लिया कि जैसे एक दिन एक लॉरी लौकी आ गई या बैंगन आ गया, और यदि दो दिन नहीं कोई ले तो वो सड़ जाएगा ना, तो एक दिन में तीन लॉरी आ गई यहाँ, और अब किसके यहाँ लेगा, इसका पास सस्ता मिलेगा, और यदि नहीं उसका बिकेगा तो वो क्या होगा, सड़ेगा, तो वो जानबूझ करके ही सस्ता कर देगा, और सस्ता लेने पर भी यदि सभी लोगों ने ले लिया 10-10 किलो 5-5 किलो तो वो अधिक रखेंगे तो उनके घर में भी तनष्ट होगा, इसलिए क्या किया जाएगा, वो अधिक नहीं बिकेगा। तो ये सड़ने वाली तो चीज नहीं है, किंतु महाप्रभु जी को उन्होंने एक बहाने से उनको बतलाया कि आपने इतना चावल बाजार में ला दिया और सब लोग खरीद करके अपने भंडार को पूरा कर लिया, जो ऐसा कोई आदमी बचा नहीं है जिसके पास में वो चावल अर्थात प्रेम नहीं है।